वहां पर सूरदास जी वे तो यही मानते हैं कि मेरे भगवान क्या है, शिशु हैं। और जब शिशु हैं तो रक्षा क्या करेंगे, उनकी रक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए सूरदास भागते हैं। भाव की दृष्टि से कितना सुंदर सत्य है। तो यहां पर भी मानो राजा जनक कहते हैं, राजा जनक से कहते हैं, विश्वामित्र मुझे इसलिए हंसी आ गई, एक और तुम उन्हें बालक कहते हो, दूसरी ओर उन्हें पालक कहते हो, तो भाई अब यह तो बिल्कुल आएगी ही बात। और फिर यह जो तुमने कहा सत्य, बहुत अच्छी बात कही, ब्रह्म जो निगम ने ती कहीं गावा, उभय सधन की सोई आवा। जो कहते हैं कि क्या हुआ, जो ब्रह्म है वही क्या दो रूप धारण करके आ गया है। जनक जी का तात्पर्य बड़ा विलक्षण है, वे तो वेदांती हैं, अद्वैत वेदांत में पूर्ण विश्वास है। वो यह मानते हैं कि यह जो है ब्रह्म अद्वय है, एक है, एकमेवाद्वितीय है, ऐसे अद्वय तत्व है जिसमें कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार से वे मानते हैं। और इसके बाद वे कहते हैं कि वह दो रूप लेकर के सामने आ गया, तो शायद विश्वामित्र जी के मन में आया होगा, यदि तुम्हारा ब्रह्म एक ही है और जब तुम कहते हो कि ब्रह्म क्या दो रूप लेकर के आ गया, तो ब्रह्म दो रूप लेगा तो वह अद्वय कैसे हुआ। जनक, विश्वामित्र जी का संकेत। तो राजा जनक कहते हैं, प्रभु मैंने इसलिए दो रूप कहा कि एक रूप ही लेकर के यदि आ गए होते ब्रह्म, तब तो यह कहा जा सकता था कि ब्रह्म की इति है। यदि श्री राम के रूप में ही आते तो ऐसा कहा जा सकता था कि ब्रह्म काला है, वह श्यामल है। यदि लक्ष्मण जी के रूप में आते तो कहा जा सकता था कि ब्रह्म गोरा है, पर जब दो रूप लेकर के आ गए तो वही नेति की बात फिर सार्थक हो जाती है कि ब्रह्म काला है या गोरा है, दोनों में से कौन सा है। उभय वेश लेकर के जब ब्रह्म आया है तो यह मानो नेति नेति के कथन की सार्थकता के लिए आया है। यह तो अगर कहो कि काला तो दूसरी ओर दिखा दें, देखो यह गोरा भी है। अगर कहो कि ब्रह्म गोरा तो इधर दिखा दें कि ब्रह्म काला भी है, तो श्याम और यह गौर वर्ण, यह दोनों उभय वर्ण लेकर के आने वाला ब्रह्म यह नेति नेति में आता है, यह उनका तात्पर्य। और सहज विराग रूप चित मोरा, जिस समय कहा जनक जी ने कि मेरा तो चित्त सहज वैराग्य में स्थित है, तो हंस पड़ते हैं मुनि, कहते हैं देखो हंसने का एक कारण यह भी है, एक ओर तो तुम कहते हो कि तुम्हारा चित्त सहज वैराग्य में स्थित है और दूसरी ओर तुम कवि भी बन गए। तुम कहने लगे कि जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर होता है, हर्षित होता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी द्रवित हो रहा है, तो ज्ञानी तुम्हारे हृदय में यह साहित्य कहां से आ गया। यह मानो बड़ा सुंदर संकेत है विश्वामित्र जी का कि तुम्हारे हृदय में साहित्य का सर्जन हो रहा है, कविता फूट रही है। तो ज्ञानी जनक आज भाव से भर जाते हैं, जिनके हृदय में केवल विवेक है, वैराग्य का भाव प्रबल है, वहां पर भाव चला आता है। और इसीलिए मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भय उबिदे उबिदे उबसे की। कि मूर्ति देख करके, सुंदर मूर्ति देख करके राजा जनक जो विदेह थे, विदेह विशेष विदेह हो जाते हैं। क्या मतलब, वे विदेह तो थे क्योंकि वे विदेह देश पर शासन कर रहे थे। मिथिलापुरी को विदेह के नाम से भी जाना जाता था, तो मिथिलापुरी के राजा थे इसलिए उनका नाम विदेह था, यह तो ठीक। और कहा कि आज राजा जनक के नाम की सार्थकता हो गई। कैसे सार्थकता हो गई, आज जो राजा हैं वे सचमुच में ये विदेह बन जाते हैं, आज देह का भान नहीं है, आज वे कह देते हैं कि अब तो थकित हो तो जिव चंद्र चकोरा, अटपटी बातें करने लगते हैं, उनके मुख से उल्टी बातें निकलने लगती हैं, मानो भान नहीं रहा है, मानो देह से ऊपर उठ गए हैं। असल और सही अर्थों में आज विदेह विदेह हो गए। अब तक तो विदेह के राजा होने के कारण विदेह थे, पर आज देह से ऊपर जाने के कारण विदेह हो गए हैं। तो राजा जनक अपने ज्ञान के माध्यम से श्री राम को पाते हैं।
सलोने इन तेलही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरोरुहनैन, कोटि मनोज न जावनिहारे, सुमुख कहूं को आई तुम्हारे।
ये कौन है तुम्हारे, पूछ दिया। और तब सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कहा कि ये तो मेरे छोटे देवर हैं। और फिर खंजन मंजू तिरीछे नयननी, मानो तिरछी नजर से चितवन से श्री राम की ओर देखती हैं, और निज पति कहे वो तिन्हन सिय सैननी, इशारे से कहती हैं कि ये मेरे पति, इशारे से। अब बड़ा विलक्षण संकेत है। वैसे तो हम पढ़ते हैं, मैथिली शरण जी ने कहा परिचय, जब गांव की बालाओं ने पूछा तो सीता जी ने परिचय दिया कि ये मेरे छोटे देवर हैं और ये उनके बड़े भाई हैं। तो इससे यह परिचय मिल गया कि पति हैं। पर यहां पर उनके संबंध में, श्री राम के संबंध में कुछ नहीं कहती, केवल संकेत करती है, सैनन इशारा करती है। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो सही सही परिचय है ब्रह्म का। ब्रह्म तो अवांग मनस गोचर है, ब्रह्म का परिचय कैसे दिया जाए? जो मन से परे है, वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है, उसका परिचय तो केवल संकेत के माध्यम से दिया जा सकता है। तो मानो उसकी रक्षा भी गोस्वामी जी यहां पर करते हैं। मानो गांव की वे नारियां जब पूछती हैं तो सीता जी शयन से मानो इशारे से परिचय देती हैं, और जब परिचय मिलता है तब अति सप्रेम सिय पाय धरी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिनी होहु तुम्हो जब लग मही अहिशीष। अति सप्रेम सिय पाय धरी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिनी हो तुम जब लग मही अहिशीष। अत्यंत आनंदित होती हैं, और वे गांव की भोली भाली नारियां क्या कहती, अति सप्रेम सिय पाय धरी, सीता जी के चरणों को अत्यंत प्रेम से पकड़ लेती हैं और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं सदा तुम सुहागिन बनी रहो, तब तक सुहागिन बनी रहो, इस पति के साथ तब तक तुम जुड़ी रहो जब तक भगवान शेष के सिर पर यह पृथ्वी है। भगवान श्री राम ने बाद में कहा देखा देखा यहां की नारियां कैसी हैं, मुझे पहचान लिया, और कैसी विलक्षण बात, अगर किसी के पैर पड़े तो उसको आशीर्वाद कैसे दे, या तो पैर पड़ो या आशीर्वाद दो, पर ये विचित्र ऐसी हैं कि पैर भी पड़ती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं, और आशीर्वाद में क्या देती हैं, तुम सुहागिन बनी रहो। मानो भगवान श्री राम का संकेत है सीता जी से कि देखो कैसा अद्भुत, उन्होंने मेरे स्वरूप को पहचान लिया। कहा जब तक भगवान शेष के सिर पर पृथ्वी है तब तक तुम सुहागिन बनी रहो, अपने पति के साथ जुड़ी रहो। अरे भगवान और भगवान की शक्ति को छोड़ करके कौन तब तक जुड़ करके रहता है? ऐसे कौन पति पत्नी हैं जो इतने काल तक जीवित रह सकते हैं? ऐसा कोई पति पत्नी है, दंपति है जो तब तक जीवित रहे जब तक इस शेष के सिर पर पृथ्वी है? मानो उन्होंने प्रकारांतर से अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि तुम साक्षात जगन माता हो, वही शक्ति हो, यह ब्रह्म है, तुम दोनों हरदम मिलकर के रहो। भगवान कहते हैं कि देखो इन्होंने तुम्हारे माध्यम से मुझे पहचान लिया। राजा जनक ने ज्ञान के माध्यम से पहचाना, हनुमान जी ने अपने मानो विवेक के बल से पहचाना, बड़े बूढ़ों ने वैराग्य के माध्यम से, लक्ष्मण जी के माध्यम से पहचाना, और इन गांव की नारियों ने, भोली भाली नारियों ने भक्ति के माध्यम से पहचाना। तो मानो तुलसी के राम सबके अपने। अब कल जो लेंगे विषय यही लेंगे, तुलसी के राम सबके अपने हैं। और तुलसी, जैसा मैंने कहा कि यह जो राम कथा है उसकी उपमा या तो मंदाकिनी से देते हैं या सरोवर से देते हैं, ये दो। जैसे वे कहते भी ना, हमने तो पढ़ा, आपने सुना पढ़ा ही है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा, राम कथा मंदाकिनी। राम कथा मंदाकिनी है, गंगा है। या दूसरा, दूसरी उपमा, सुखी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी ते मानस सुभग सर घाट मनोहर चारी। यह सरोवर है, ये जो राम कथा है यह सरोवर है, यह गंगा है, मंदाकिनी है। तो कल हम सरोवर को देखेंगे, ये जो तुलसी के राम जो सरोवर के रूप में हमारे समक्ष है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके माध्यम से देखेंगे कि तुलसी कितना सुंदर चित्रण करते हैं। तुलसी के राम, इस विषय को लेकर परसों हमने चर्चा का प्रारंभ किया, और दो दिनों में यह बताने की चेष्टा की कि तुलसी श्री राम को किस दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए भगवान श्री राम का प्राकट्य इतिहास में तो हुआ है, पर वे मात्र इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि जीवन के शाश्वत तत्व और शाश्वत सत्य हैं। तुलसी ने यही माना है कि साक्षात ब्रह्म ही नर तनु धारण करके लीला कर रहा है श्री राम के रूप में, और इसीलिए अपनी राम कथा में श्री राम की ब्रह्मता को ही स्थापित करने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। मैंने कहा था उन्होंने अपनी राम कथा की उपमा या तो गंगा से दी या उन्होंने सरोवर के द्वारा राम कथा को हमारे समक्ष रखा। वे कहते हैं कि यह राम कथा एक सरोवर के समान है, समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा है, यह मंदाकिनी है, और दूसरी ओर वे कहते हैं कि यह एक सरोवर के समान है, और उन्होंने श्री राम के ब्रह्मत्व को स्थापित करने के लिए जैसे सरोवर में घाट होते हैं उसी प्रकार इस रामचरितमानस सर के घाटों की बड़ी सुंदर कल्पना की है। घाट पर व्यक्ति बैठते हैं, आपस में चर्चा होती है, वार्तालाप होता है, तो तुलसी यह मानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस सर के जो घाट बनाए हैं वहां पर भी इस प्रकार वार्तालाप का क्रम चल रहा है, और घाटों के माध्यम से वे श्री राम के ब्रह्मत्व को हमारे समक्ष प्रकट करने का प्रयास करते हैं, और वे लिख ही देते हैं सुखी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी ते ए पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी ते ए पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस सर में चार मनोहर घाट हैं और चारों घाटों पर संवाद होता है। यह जो संवादों के द्वारा घाटों के द्वारा श्री राम के ब्रह्मत्व का प्रकाशन है, यह अपने आप में एक रचना है। सरोवर के पास हम किस लिए जाते हैं? कई कामनाएं लेकर के हम सरोवर के पास जाया करते हैं। एक व्यक्ति है, वह स्नान करने के लिए सरोवर के पास जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करना चाहता है, कपड़ों को शुद्ध करना चाहता है। सरोवर के पास गया, वह क्या देखता है? सरोवर का जल स्वच्छ है या नहीं है? यदि सरोवर का जल मटमैला होगा तो उसे स्नान करने की इच्छा नहीं होगी, कपड़ों को भी धोने की इच्छा नहीं होगी। तो यह व्यक्ति है जो स्वच्छता की कामना लेकर के सरोवर के पास जाता है। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसे बड़ी प्यास लगी है, तृष्णा के कारण उसके प्राण छटपटा रहे हैं, वह भी सरोवर के पास जाता है। वह क्यों जाता है? जल पी करके अपनी तृष्णा बुझा ले, यही उसकी इच्छा होती है। तो वह सरोवर के जल में क्या देखता है? यह तो देखेगा कि सरोवर का जल स्वच्छ है या नहीं है, पर इसके साथ ही साथ वह दो बातें और देखेगा। वे दो बातें कौन सी? कि सरोवर का जल ठंडा है या नहीं। यदि जल शीतल ना हो तो पीने से प्यास बुझती नहीं। जैसे कभी कभी गर्मी के दिनों में जो आश्रम में आते हैं मंदिर दर्शन के लिए, और जिस समय अपनी प्यास बुझाने के लिए नल को खोलते हैं तो गर्म पानी निकलता है, और वे कहते हैं कि पानी तो गर्म है, इसको पीने से प्यास बुझेगी नहीं। तो स्वाभाविक ही गर्म पानी पी करके तृष्णा बुझती नहीं। जल यदि गर्म हो तो पीने की इच्छा होती नहीं। वे फिर पूछते हैं किसी से, भाई यहां कहीं पर घड़ा है? वे शीतल जल की चाह रखते हैं। तो जो प्यासा है वह भी सरोवर के पास जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, पर एक बात तो वह यह देखता है, जल की शुचिता और स्वच्छता के साथ साथ, कि जल शीतल है या नहीं है। मान लीजिए कि जल शीतल है, उसने पिया, पीने के बाद मुंह बन गया, जल खारा है, मीठा नहीं है, फिर भी प्यास बुझती नहीं। जल भले ही शीतल हो पर यदि उस जल में मिठास न हो, उसमें खारापन हो, तो भी प्यास बुझती नहीं। जैसे कलकत्ते में पहले तो वहां पर जो जल आता था, गंगा नदी से जल लेकर के उसे छान करके तरह तरह से उसे साफ करके वे नल में भेजते थे, भले ही फ्रिज में उस जल को रख दिया गया हो, आपके सामने रेफ्रिजरेटर का ठंडा जल रखा हो, पर आप पिए तो उसमें खारापन रहता था, पीने की इच्छा नहीं होती। भले ही जल स्वच्छ है, शीतल है, पर चूंकि वह खारा है इसलिए पीने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो जो प्यासा है वह जब सरोवर के पास जाता है तो यह तो देखता ही है कि जल स्वच्छ है या नहीं है, पर इसके साथ साथ वह यह भी देखता है कि वह शीतल है या नहीं, वह जल मीठा है या नहीं। और यदि जल शीतल है और मीठा है तब तो पीने की इच्छा होती है। अब एक तीसरा व्यक्ति है, वह भी सरोवर के पास जा रहा है। किसी ने पूछा, कहां चले? अरे भाई आज तो मैं जरा थक गया हूं, तो मैं सोचता हूं कि वहां पर जरा जाऊं और सरोवर में गोता लगा करके खूब तैर करके नहाऊं और इससे ताजगी का अनुभव करूंगा। तो यह व्यक्ति है जो गोता लगाने के लिए, कूद कूद करके, तैर तैर करके नहाने के लिए सरोवर के जल के पास जाता है। यह क्या देखेगा? यह तो देखेगा कि सरोवर का जल स्वच्छ है या नहीं है, पर इसके साथ ही साथ एक बात की ओर उसकी दृष्टि होगी कि सरोवर के जल में गहराई है या नहीं है। यदि सरोवर का जल गहरा ना हो तो उसे तैरने में कोई आनंद नहीं आएगा, गोता लगाने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो यह जो गोता लगाने की इच्छा लेकर के जाता है सरोवर के जल के पास, वह सरोवर के जल की गहराई देखता है। अब ये तीन व्यक्ति हो गए, भिन्न भिन्न इच्छा से सरोवर के जल के पास जाते हैं। एक जाता है स्वच्छता के लिए तो वह जल की स्वच्छता देखता है, दूसरा जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए तो वह स्वच्छता के साथ शीतलता और मधुरता देखता है, और तीसरा जाता है जल में गोता लगाने के लिए तो वह जल की स्वच्छता तो देखता ही है पर साथ में जल की गहराई भी देखता है। ये तीन घाट हो गए, और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मेरे मानस सर के तीन घाट हैं। उन्होंने चार घाट की बात कही, सुठी सुंदर संवाद बर बिरुचे बुद्धि विचारी तेई एई पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। तीन घाटों का वर्णन किया, ये तीन मेरे घाट हैं जहां पर स्वच्छता की कामना लेकर मनुष्य जाता है, वह कर्म का घाट है। वे कहते हैं वहां पर मनुष्य कर्म के द्वारा अपने चित्त के मल को स्वच्छ करना चाहता है, तो वह स्वच्छता का घाट या कर्म का घाट है। वह दूसरा व्यक्ति जो अपनी तृषा बुझाने के लिए जाता है सरोवर के जल के पास, वह मानो भक्ति का घाट है कि यह प्यासा व्यक्ति उस भक्ति का पान करके अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। और जो तीसरा व्यक्ति है, गोता लगाने के लिए जाता है सरोवर के जल की गहराई देखता है, वह ज्ञान का घाट है। वहां पर गंभीरता चाहिए, वहां पर तो व्यक्ति गहराई को देखने के लिए जाता है। तो ये तीन घाट गोस्वामी जी हमारे समक्ष रखते हैं। तो स्वच्छता का घाट
लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करें मलहानी।
यह लीला सगुन, ये जो कर्म का घाट है, कर्म करने वाला ईश्वर को स्वीकार करता है, वह सगुण ईश्वर को स्वीकार करके अर्चना करके अपने को समर्पित करते हुए अपने जीवन में शुचिता लाना चाहता है। तो लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करे मल हानि, वह स्वच्छता है और वह मल की हानि करती है, हमारे अंतर मल को दूर कर देती है। और जो भक्ति का घाट है,
प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई।
प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वह मानो वही शीतलता है, वही मधुरता है उस घाट के जल की, यह भक्ति का घाट। और कौन सा है ज्ञान का घाट?
रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा।
यह जो रघुपति की अगुण महिमा है, यही संकेत है। जो रघुपति की महिमा है, कैसी महिमा? अगुण महिमा है, निर्गुण महिमा है, जिस महिमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बरनब सोई बरबारी अगाधा, वही मानो जल की गहराई है। और इस प्रकार गोस्वामी जी ज्ञान के घाट में हमें ले जाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान के घाट में जल की गहराई दिखाई देती है। अब यहां पर एक सूक्ष्म संकेत ऐसा मिलता है कि आप जानते हैं कि सरोवर के जल की स्वच्छता का संबंध उसकी गहराई के साथ होता है। जो सरोवर जितना गहरा है, उसका जल उतना ही स्वच्छ होता है। तो यहां पर वे कहते हैं कि यह जो निर्गुण महिमा है भगवान श्री राम की, वही मानो इस जल की, इस सरोवर की गहराई है। और इसका तात्पर्य क्या? एक बड़ा विलक्षण तात्पर्य इससे ध्वनित होता है कि तुलसी के राम क्या हैं? वे निर्गुण निराकार हैं अथवा सगुण साकार हैं? यह प्रश्न उपस्थित होता है। तुलसी अपने राम को किस दृष्टि से देखते हैं? वैसे तो रामचरितमानस को पढ़ें, भगवान श्री राम की लीलाओं को देखें, ऐसा लगता है कि तुलसी ने अपने राम को चित्रित किया है सगुण के रूप में, साकार के रूप में, क्योंकि सगुण और साकार होकर के ही तो श्री राम लीला कर रहे हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि तुलसी सगुण और साकार राम के उपासक हैं। पर वे क्या कहते हैं? ठीक है, मैं सगुण और साकार राम का उपासक तो हूं, पर मैं क्या मानता हूं जानते हो? ये जो मेरे राम हैं, इसके पीछे में उनका निर्गुण और निराकार रूप महक रहा है, मानो वही आधार है। निर्गुण और निराकार के आधार पर सगुण और साकार राम की लीला चल रही है, यह गोस्वामी जी की मान्यता है। और इस मान्यता का पोषण आप रामचरितमानस में सर्वत्र पाइएगा। एक ओर वे कहते हैं कि मनुष्य के रूप में वही भगवान लीला कर रहे हैं, और जब मनुष्य का रूप धारण किया है तो उनका एक नाम है, उनका एक रूप है, वे गुण वाले हैं, वे आकार वाले हैं। पर तुलसी यह कहते हैं कि यह जो गुण दिखाई दे रहा है उसका आधार है निर्गुण, यह जो आकार दिखाई दे रहा है उसका आधार है निराकार। और इस प्रकार तुलसी के जो राम हैं वे निर्गुण और निराकार पर आधारित हैं, वह जो सगुण और साकार की लीला चलती है वह निर्गुण और निराकार की बुनियाद पर चलती है। जैसे तुलसी मानो कहेंगे, अगर तुम राम को केवल सगुण और साकार मानो तो उससे क्या होगा। हम जाते हैं सरोवर से एक बाल्टी जल ले लेते हैं, अपने गंदे कपड़ों को हम साफ करना चाहते हैं, उस बाल्टी के जल में हमने अपने गंदे कपड़ों को डाल दिया तो क्या होगा, हमारा गंदा कपड़ा तो साफ हो जाएगा पर बाल्टी का जल गंदला हो जाएगा। आप देखेंगे कि बाल्टी के जल में गंदगी आ गई, उसने हमारे गंदे कपड़ों को तो साफ कर दिया पर यदि आप सरोवर में चले जाएं, अपने वस्त्रों को वहां पर जाकर के साफ करने लगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपका कपड़ा भी साफ हो गया और यह भी देखेंगे कि जल भी गंदला नहीं हुआ। तो ठीक यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हमने श्री राम को केवल सगुण और साकार माना तो वे हमारी गंदगी को तो दूर कर देंगे पर वे स्वयं गंदे हो जाएंगे हमारी गंदगी से लिपट करके। इसलिए सगुण और साकार के पीछे उन्होंने निर्गुण और निराकार तत्व को खड़ा किया, आधार के रूप में स्वीकार किया। यह तुलसी की दृष्टि है श्री राम के पीछे। जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस सदुखड़ी भाषा की वह मानो कविता गाया करते थे, वह प्रचलित एक पद्य है ना, जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा, वही राम है जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा, भगवान श्री राम कृष्ण देव यह गीत कभी कभी अपने मधुर कंठ से गाया करते थे। माने जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में लेटा है, वही जगत पसारा है और वही सबसे न्यारा है। न्यारा का मतलब वही सर्वातीत है, वही सर्वांतर्यामी है, घट घट में है सर्वांतर्यामी है, सबसे न्यारा है मानो वह सर्वातीत है, ऐसा वह ब्रह्म राम के रूप में लीला करता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की मान्यता। तभी तो एक संशयी ने पूछ दिया, अच्छा गोस्वामी जी आप सगुण साकारवादी हैं अथवा निर्गुण निराकारवादी हैं। अब गोस्वामी जी इस प्रश्न का क्या उत्तर दें। अब इस दृष्टि से देखें कि वे सगुण साकारवादी हैं या निर्गुण निराकारवादी हैं, तब तो प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं बनता, क्योंकि गोस्वामी जी कोई वादी तो है नहीं। वादी का मतलब होता है जो केवल एक सिद्धांत को पकड़ लेता है और कहता है कि बस यही मेरा सिद्धांत ठीक है, अपने सिद्धांत का वाद करने वाला, अपने सिद्धांत पर अडिग रहने वाला। तो जब संशयी ने पूछ दिया, गोस्वामी जी आप निर्गुण निराकारवादी हैं अथवा सगुण साकारवादी हैं, गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं वादी तो नहीं हूं, मैं तो यह नहीं मानता। कैसे, आप कैसे नहीं मानते, या तो आप निर्गुण निराकार को स्वीकार करेंगे या फिर आप सगुण साकार को स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मैं किसी प्रकार का वादी नहीं, मैं ऐसा कोई संकीर्ण सिद्धांत नहीं मानता। तो क्या इसका यह मतलब है, संशयी ने पूछा, कि आप राम को निर्गुण निराकार भी मानते हैं और सगुण साकार भी मानते हैं। तुलसी ने कहा यदि मैं मानता हूं तो इसमें क्या दोष है, कैसे आप मान सकते हैं, ये तो विरोधी गुण है, एक ही व्यक्ति में विरोधी गुणों की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। कहा देखो इस प्रकार की बात अभी मत करो, ऐसा मान करके चलो कि जैसे मान लो तुम्हारे घर में दो अतिथि आ गए तो तुम क्या करोगे, दो अतिथियों में से ऐसा कहोगे कि अच्छा एक अतिथि ठहर जाए और दूसरा अतिथि निकल जाए, क्या करोगे, तुम दोनों अतिथियों को घर में जगह दोगे ना। कहा हां दोनों अतिथियों को जगह तो दूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा बस यही मेरे साथ भी बात हुई, सगुण साकार और निर्गुण निराकार आए और दोनों ने कहा मुझे जगह दो, तब मैं क्या करता, मुझे तो दोनों को जगह देनी पड़ी। पर ठीक है गोस्वामी जी आपने दोनों को जगह दी, पर आजकल ऐसा भी तो होता है ना कि दोनों अतिथियों में जो बेहतर और श्रेष्ठ अच्छी है उसको आपने बढ़िया कमरा दिया होगा। आजकल बढ़िया कमरा का मतलब अटैच बाथ वाला घर में होता है, कोई हमारे अच्छे अतिथि आते हैं उनको हम डब्ल्यू सी अटैच कमरा देते हैं कि अटैच बाथ वाला कमरा है कहते हैं, और ठीक है दूसरे अतिथि हैं अब उनको वापस तो नहीं भेजना है तो चलो ठीक है आपको भी देते हैं बैठक खाने में, जहां पर सोफा है वहां पर दे दिया, आप कॉमन बाथरूम यूज कर लीजिएगा, हम ऐसा कहते हैं। तो उसने कहा संशयी ने कि ठीक है आपने दोनों को जगह दे दी, पर यह तो हो सकता है